دیکھیے بھائی کتاب پر. وعلامت فعل آنس کے قدر اولش باشد چون قد ضربا، یا سین باشد چون سیضربو، یا سوف باشد چون سوف یضربو، یا حرف جزم بود چون لم یضرب، یا ضمیر مرفوع متصل بدو پیوندد چون ضربتو، ضربتا، ضربتی، یا تائے ساکین چون ضربت، یا امر باشد چون اضرب، یا نہیں باشد چون لا تضرب. و علامت حرف آن است کے ہیچ علامت از علامات اسم و فعل درو نبود. اچھا بھائی، نحمیر ہم پڑھ رہے ہیں جو تصنیف ہے میر سید السند کی، اور تو یہ میر سید السند اس نام سے بھی مشہور ہیں اور میر سید الشریف اس نام سے بھی مشہور ہیں بھائی، اور بڑی پیاری کتاب انہوں نے لکھی بھائی. سینکڑوں سال گزر گئے، یہ علماء کی توجہ کا مرکز ہے، ابتدائی طلباء کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے صرف ضروری ہے بھائی، صرف صرف. اور انہوں نے بھی خطبے میں ذکر کیا تھا کہ میری کتاب سے پورا فائدہ اٹھائیں گے وہ لوگ جب علم صرف کے ماہر ہوں گے، علم صرف پڑھ چکے ہوں گے. تو گزشتہ سبق میں ہم نے علامات اسم پڑھنا شروع کی تھی، اور اس سے گزشتہ سبق میں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب کوئی بڑی عبارت آپ کے سامنے آئے، بڑا جملہ آئے جس میں دو سے زیادہ الفاظ ہیں، تو سب سے پہلے اس کے اندر اسم، فعل اور حرف کو الگ الگ کریں، اور پھر اس کے بعد معرب اور مبنی کو پہچان لیں، اور اس کے بعد عامل اور معمول کو دیکھ لیں، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ آپس میں یہ کلمات کس طرح جڑے ہوئے ہیں، کس سے جڑے ہیں، کس سے نہیں جڑے. تو اس سے آپ کو مسند اور مسند الیہ کا پتہ چل جائے گا، اور جب مسند اور مسند الیہ کا پتہ آپ کو چل جائے گا تو آپ کو جملے کا صحیح صحیح معنی سمجھ میں آ جائے گا. تو اب ان چیزوں کو پہچاننا کیسے ہے، یہ جو چار پانچ چیزیں انہوں نے ترتیب وار بیان کر دیں، تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا تھا کہ اسم، فعل اور حرف کو پہچان لیں. کس کو پہچان لیں؟ اسم، فعل اور حرف کو پہچان لیں. تو اسم، فعل اور حرف کو کیسے پہچانیں گے، اس کے لیے انہوں نے اسم، فعل اور حرف کی نشانیاں بتلانا شروع کیں، اور گزشتہ سبق میں ہم نے اسم کی علامتیں پڑھی تھیں. میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے اسم کی تعریف اور ایک ہے اسم کی علامتیں. تعریف سے کوئی چیز ذہن میں ممتاز ہو جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے، اور علامت سے خارج میں کوئی چیز ممتاز ہوتی ہے، باقی چیزوں سے الگ ہو جاتی ہے. جیسے کسی کی تلاش کے لیے آپ نے کسی کو بھیجا تو آپ اس کی نشانیاں اس کو بتلاتے ہیں کہ اس نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوں گے، اس رنگ کی پگڑی پہنی ہوگی، اس رنگ کے جوتے پہنے ہوں گے، یا اس رنگ کی گاڑی میں وہ بیٹھا ہوگا. تو وہ نشانیوں سے آپ خارج میں اس آدمی کو پہچانتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو نشانیاں ہوتی ہیں ان کے ذریعے اسم، فعل اور حرف کی آپ آسانی سے پہچان کر سکتے ہیں. اور پھر یہ نشانیوں اور ان علامتوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو اسم کی علامتیں ہیں وہ فعل میں نہیں ہوں گی، اور جو فعل کی علامتیں ہیں وہ اسم میں نہیں ہوں گی. اگر علامتیں ایک دوسرے میں بھی پائی جائیں پھر تو وہ علامت ہی نہ رہی بھائی. اگر وہ علامت اسم میں بھی ہے، فعل میں بھی ہے، حرف میں بھی ہے، تینوں میں آتی ہے، تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. وہ علامت آ بھی جائے تو وہ تو اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے، اور حرف بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ ایسی ایسی علامتیں اور نشانیاں آپ کو بتلائیں گے، اسم کی نشانیاں جو صرف اسم میں پائی جائیں، فعل اور حرف میں نہ ہوں. فعل کے اندر جو نشانیاں ہوں گی وہ اسم اور حرف کے اندر آپ کو نہیں ملیں گی. تو ان نشانیوں کے ذریعے آپ آسانی سے اسم، فعل اور حرف کو پہچان سکیں گے. تو کل کے سبق میں اسم کی علامتیں آپ نے پڑھی تھیں، انہوں نے 11 علامتیں آپ کو بتلائیں، اور میں نے بتلایا تھا کہ یہ 11 ہی علامتیں نہیں ہیں، یہاں انہوں نے موٹی موٹی اور آسان علامتیں جو ابتدائی درجے کے طلبہ آسانی سے یاد کر سکیں، وہ انہوں نے بیان کر دیں. تو کوئی 11 علامتیں بیان کیں, حالانکہ اسم کی کوئی 25-30 یا اس سے بھی زیادہ علامتیں علماء نے ذکر فرمائی ہیں. اسی طرح فعل کی یہ غالباً 8-10 علامتیں صرف ذکر کریں گے. فعل کی بھی حالانکہ 15-20 سے بھی زائد علامتیں علماء نے اور کتابوں میں بیان کی ہیں. تو یہاں صرف وہ موٹی موٹی اور آسان علامتیں جو آپ لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور یاد کر سکیں وہ بیان کریں گے. تو کل 11 علامتیں اسم کی بتلائی تھیں. پہلی علامت کیا تھی کہ اس کے شروع میں کیا آئے؟ الف لام. یہ آپ کو یاد ہونی چاہیے بھائی, ان کے ذریعے آپ فوراً حل کریں گے, عبارت حل ہوگی, سمجھ میں آئے گی آپ کو. پہلی علامت یہ کہ کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے, اسم ہے. دوسری علامت یہ کہ اس کسی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو پھر آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے. اور حروف جارہ کل 17 ہیں. کل کتنے ہیں؟ 17 ہیں. اور یہ آگے ان کا ذکر آ جائے گا. بس اتنا یاد رکھیں کسی بھی لفظ کے شروع میں حرف جر آ جائے تو وہ اسم ہے, کیونکہ فعل یا حرف پر حرف جر داخل نہیں ہو سکتا. تیسری علامت انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ جس لفظ کے آخر میں تنوین آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اسم ہے, تنوین فعل یا حرف کے آخر میں نہیں آئے گی. اور چوتھی علامت انہوں نے یہ بتلائی تھی کہ وہ لفظ مسند الیہ ہو. دیکھو ایک ہے مسند, ایک ہے مسند الیہ. مسند الیہ کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں جس کے بارے میں بات کی جائے. زید ان قائم ان, کس کے بارے میں بات کی؟ زید. تو زید ہوا مسند الیہ. اور کیا بات کی؟ کہ قائم ان, وہ کھڑا ہے. تو یہ ہے مسند. تو مسند الیہ وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جائے, اور مسند وہ جو بات کی جائے اس کو مسند کہتے ہیں. اور آپ نے پڑھا تھا کہ فعل صرف مسند بنتا ہے, مسند الیہ نہیں بن سکتا. اور حرف نہ مسند بنتا ہے اور نہ مسند الیہ, جبکہ اسم مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی. تو مسند الیہ صرف اسم بن سکتا ہے اور کوئی بھی نہیں. تو جب کوئی لفظ مسند الیہ ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ اسم ہے. پانچویں علامت انہوں نے یہ ذکر کی تھی کہ کوئی لفظ اگر مضاف ہو تو آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے, اسم ہے. مضاف ہونا اسم کی علامت ہے. اور اسی طرح اگر کوئی مصغر ہو, مصغر میں نے بتایا تھا کہ کسی اسم سے اس میں چھوٹا ہونے کا معنی پیدا کرنے کے لیے تصغیر بنائی جاتی ہے. کیا بنائی جاتی ہے؟ تصغیر. جیسے رجلن سے رجیلن, یعنی فعیل وزن پر لے جاتے ہیں عموماً. بھائی اور بھی اوزان ہیں لیکن بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ اس کو فعیل وزن پر لے جاتے ہیں. تو دیکھو جیسے رجیلن کیا معنی ہوگا؟ رجل کا معنی تھا آدمی, مرد. تو رجیل کا معنی چھوٹا آدمی یا چھوٹا مرد. اسی طرح کتاب, اس کی تصغیر کیا آئے گی؟ کتیب, یعنی چھوٹی کتاب. اور نیز یہ کبھی کبھار محبت کے لیے بھی یہ تصغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور کبھی تحقیر اور اہانت کے لیے بھی تصغیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی, ایک آدمی بد اخلاق ہے, کسی نے اس کا ذکر کیا کہ وہ مطلب رجل کے ساتھ اس کو ذکر کیا, تو دوسرے نے تحقیر کے طور پر کہا کہ بھئی وہ رجل کہلانے کے لائق نہیں ہے, وہ تو بد اخلاق آدمی ہے, وہ رجیل ہے, چھوٹا سا ایک آدمی ہے. بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ تصغیر یہ کس کی علامت ہے؟ اسم کی. تصغیر کس میں آئے گی؟ صرف اسم میں آئے گی. تو قریشن یہ کیا ہے؟ مصغر ہے, یہ اسم ہے, وہ فعیل وزن پر. اس کے بعد اگلی علامت انہوں نے ذکر کی تھی کہ کوئی لفظ منصوب ہو. اس میں منصوب اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یائے مشدد ہو. یہ کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے لاہور کی طرف کسی چیز کی آپ نسبت کرنا چاہیں تو یا مشدد آخر میں ملا دیں گے, لاہوری یون, یعنی لاہور والا. پاکستان کی طرف کسی کی نسبت کرنا چاہیں تو اس کے آخر میں یا مشدد ملا دیں گے, پاکستانی یون, پاکستان والا, یا پاکستان کی طرف منصوب. تو اس کو اس میں منصوب کہتے ہیں. یا وہ تثنیہ اور جمع ہو. گئی تثنیہ میں نے بتلایا تھا, تثنیہ کہ جو دو پر دلالت کرے, دو افراد پر. جیسے رجل کا معنی ایک آدمی, لیکن اسی سے ہم تثنیہ بنانا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے, عربی میں آخر میں الف اور نون بڑھا دیتے ہیں تو وہ بن جائے گا رجلانی. रजुलानी का क्या माना? दो आदमी। किताब का माना एक किताब, और दो किताबों में क्या कहेंगे? किताबानी। तो कभी अलिफ नून आता है और कभी या नून आखिर में आएगी। रजुलन रजुलानी और रजुलैनी, किताब से किताबानी और किताबैनी, कलम से कलमानी और कलमैनी, ये तस्निया है। और एक अलामत जो है वो जमा है, जमा होना भी इसम की अलामत है। जैसे एक हो तो कहेंगे रजुल, दो हो तो कहेंगे रजुलानी या रजुलैनी, और दो से ज्यादा हो तो उसको क्या कहेंगे? रिजाल। और ये जमा है, तीन और तीन से ज्यादा पर बोला जाता है, और ये इसम की अलामत है। तो रिजाल क्या है? इसम। आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये क्या है? जमा है। इसी तरह कलम की जमा क्या आएगी? अकलाम। और किताब की जमा क्या आएगी? कुतुब। इस पर आपके जहनों में इश्काल आएगा कि आपने हमें बतलाया कि ये तस्निया और जमा इसम की अलामत है। तस्निया और जमा तो हमने फेल में भी पढ़ा है, जाराबा जाराबा जाराबू, देखो तस्निया और जमा है। फेल मुजारे में भी है, यजरीबू यजरीबानी यजरीबूना। यजरीबानी क्या है? तस्निया। और यजरीबूना क्या है? जमा। तो वहां भी तस्निया और जमा आता है। तो जवाब मैंने आपको बतलाया था कि भाई फेल कभी भी तस्निया और जमा नहीं आता, ये फेल के आखिर में जमीरें बदल रही हैं, तस्निया और जमा की जमीरें आ रही हैं, वरना खुद फेल मुफरद ही रहता है। जाराबा जाराबा, ये जाराबा जो देखो इसके आखिर में ये जो अलिफ है ये तस्निया की जमीर है, इसको जरा हटा दो, अलिफ को हटाओ, क्या रह गया? जाराबा। फेल उसी तरह मुफरद है। जाराबू, इसके आखिर में क्या है? ये वाव जमा की जमीर, इस वाव को जरा हटाओ, क्या रह गया? जाराबा रह गया भाई। तो फेल हमेशा मुफरद होता है, इसके साथ फाइल की जमीर कभी मुफरद वाली आएगी, कभी तस्निया वाली और कभी जमा वाली। तो वो फाइल की जमीर होगी, वो फेल नहीं है भाई। उसके बाद आपने इन्होंने बतलाया था कि इसम की एक अलामत यह है कि वो मौसूफ हो। मौसूफ भाई वो चीज जिसकी कोई सिफत यानी कोई अच्छाई या बुराई बयान की जाए। जैसे मैंने कहा बहादुर आदमी, देखो मैंने आदमी की अच्छाई बयान की, या मैंने कहा सच्चा आदमी, देखो मैंने उसकी अच्छाई बयान की, या मैंने कहा कंजूस आदमी, देखो मैंने उसकी बुराई बयान की। तो ये जो सिफात हैं उर्दू के अंदर पहले आती हैं और अरबी में बाद। जैसे अच्छा आदमी, देखो अच्छा का लफ्ज पहले आया और आदमी जो मौसूफ है वो बाद में। देखो सच्चा आदमी, सच्चा का लफ्ज पहले आया, सिफत पहले आई और आदमी जो मौसूफ है वो बाद में आया। और इसी तरह बहादुर आदमी, देखो बहादुर जो सिफत है वो पहले आई और आदमी जो मौसूफ है वो बाद में आया। लेकिन अरबी में इसका बरअक्स है, अरबी में मौसूफ पहले आता है और उसके बाद सिफात आती हैं। जैसे रजुलन शुजाउन, रजुलन तो रजुलन है मौसूफ और शुजाउन उसकी सिफत। शुजाउन का क्या माना? बहादुर। तो उर्दू में देखो बहादुर आदमी, बहादुर पहले था और आदमी बाद में, लेकिन अरबी के अंदर आदमी यानी रजुल पहले है और शुजाउन उसकी सिफत बाद में है। तो मौसूफ होना ये इसम की अलामत है। जिस लफ्ज की कोई सिफत आ जाए आप समझ जाएं ये क्या है? इसम है। रजुलन शुजाउन, आपको क्या पता चला कौन सा लफ्ज इसम है? रजुल, क्योंकि उसके आगे उसकी सिफत शुजाउन आ रही है। और शुजाउन क्या है? वो इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम। कैसे पता चला? उसके आखिर में तनवीन है। शाबाश। और आखिरी अलामत उन्होंने बतलाई थी कि उसके साथ ताय मुतहर्रिक जुड़ जाए, ताय मुतहर्रिक उसके साथ जुड़ी हो। जैसे जारिबुन से जारिबतुन, फातिहुन से फातिहतुन, मानिउन से मानिअतुन। तो इससे मुराद वो गोलता है, ये गोलता पर हमेशा कोई ना कोई हरकत होती है। एक लंबी ता है, जाराबा जाराबा जाराबू जाराबत जाराबत, ये देखो यहां लंबी ता लिखते हैं और ये साकिन होती है। और ये जो गोलता होती है जारिबतुन, इस पर हमेशा कोई ना कोई हरकत होती है। तो ये जो गोलता है ये इसम की अलामत है, ये सिर्फ इसम के साथ जुड़ेगी। जिस लफ्ज के साथ ये अलामत जुड़ जाए ये गोलता, आप समझ जाएं ये इसम है। तो अब मुझे बताइए जारिबतुन ये क्या है? इसम। कैसे पता चला? आखिर में गोलता जुड़ी हुई है। अब आइए भाई आगे फेल की अलामतें हम पढ़ते हैं। کہتے ہیں وہ علامت فعل آنس، اور فعل کی علامت وہ ہے کہ قد در اولش باشد، کہ قد جو ہے اس کے شروع میں ہو. اولش، یہ شین کس لیے آتا ہے؟ اس کے لیے، اول یعنی پہلے، اولش اس سے پہلے یا اس کے شروع میں. قد در اولش باشد، کہ قد اس کے شروع میں ہو. چون قد زاربا، جی فعل کی پہلی علامت کیا ہے؟ قد. قد جس لفظ کے شروع میں قد آ جائے، آپ سمجھ جائیں یہ کیا ہے؟ فعل ہے. جیسے قد زاربا، جی قد زاربا میں زاربا کیا ہے؟ فعل. آپ کو کیسے پتا چلا؟ اس کے شروع میں قد ہے. یا سین باشد، یا سین اس کے شروع میں ہو. چون سیضربو، سیضربو یاد رکھو، عربی زبان میں سین اور سوفا، سوفا کا بھی آگے بیان آ رہا ہے، سین اور سوفا فعل پر داخل ہوتے ہیں. سین اور سوف، جیسے سین داخل ہوا تو یضربو پر سین داخل کیا، سیضربو، اور کبھی سوفا داخل کرتے ہیں سوفا یضربو. یہ جو فعل مضارع ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں علم صرف کے اندر کہ اس میں حال اور استقبال دونوں معنی ہوتے ہیں. یضربو کا کیا معنی؟ وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا. ایک آدمی اس وقت پٹائی کر رہا ہے تو بھی میں کہوں گا یضربو زیدن، زید پٹائی کر رہا ہے. اور ایک زید ہے، اس نے کہا میں کل پٹائی کروں گا، تو بھی میں کہوں گا یضربو زیدن، زید پٹائی کرے گا. دیکھا، دونوں کے لیے وہی یضربو استعمال ہوتا ہے. لیکن اتنا یاد رکھنا، مضارے میں احتمال تو دونوں ہوتے ہیں، حال کا بھی اور استقبال، لیکن ایک وقت میں ایک ہی زمانہ آئے گا، یا حال آئے گا. اگر حال آ گیا تو استقبال نہیں، اور اگر استقبال آ گیا تو حال نہیں. ایک ہی وقت میں دونوں زمانوں کا ترجمہ آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے موقع محل دیکھنا ہے، کہیں حال والا ترجمہ ٹھیک ہے تو پھر حال ہی کا ترجمہ کریں گے، استقبال والا نہیں، اور کہیں استقبال والا ترجمہ ٹھیک ہے تو استقبال والا ہی کریں گے، حال کا ترجمہ نہیں کریں گے. تو اب مضارے میں دونوں احتمال ہوتے ہیں، حال کا بھی اور استقبال کا بھی، دونوں احتمال ہوتے ہیں. لیکن جب مضارے پر سین یا سوفا داخل ہو جائے، اب یہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا، اب حال والا ترجمہ نہیں کرنا. تو یضربو کا معنی وہ پٹائی کرتا ہے یا پٹائی کرے گا، یہ یوں کہو وہ پٹائی کر رہا ہے یا وہ پٹائی کرے گا. لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں سیضربو، سین داخل کر دیا، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ وہ پٹائی کرے گا، یعنی مستقبل کی بات ہوگی، اب حال کی بات نہیں. اسی طرح سوف یضربو، اس کا بھی یہی معنی کہ وہ پٹائی کرے گا، حال کی بات نہیں. اور یاد رکھنا تو کہ یہ سین اور سوفا مستقبل کے لیے آتے ہیں، مستقبل قریب کے لیے. تو ترجمہ یوں کریں گے سیضربو زیدن، عن قریب زید پٹائی کرے گا. کیسے ترجمہ کریں گے؟ عن قریب زید پٹائی کرے گا. اور سوف یضربو، اس کا بھی وہی ترجمہ ہوگا، عن قریب زید پٹائی کرے گا. سیضربو کا کیا ترجمہ؟ اور سوف یضربو زیدن، عن قریب زید پٹائی کرے گا. دونوں مستقبل کے ساتھ خاص کرتے ہیں، اور مستقبل قریب کے ساتھ کر دیتے ہیں خاص. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سین جو ہے وہ زیادہ قریب کے لیے ہے، زیادہ قریب کے لیے. مثلا آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ زید کل پٹائی کرے گا اور عمر پرسوں پٹائی کرے گا. اب کل یا پرسوں کے علاوہ ویسے اس کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، زید کب کرے گا؟ مثلا ایک دن بعد. اور عمر کب کرے گا؟ دو دن بعد. تو پھر کیسے کہیں گے؟ سیضربو زیدن، دیکھو ایک دن بعد زید کر رہا ہے اور عمر دو دن بعد کر رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ سوف یضربو عمرن. دیکھا، سنتے ہی آپ کو پتا چل گیا، معلوم کہ ایک کے لیے سین لائے، ایک کے لیے سوفا لائے، معلوم ہوا سین جو ہے وہ قریب ہے اور سوفا اس کے مقابلے میں بعید ہے، دور ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرق ہے سین اور سوفا میں، اور یہ دونوں فعل کی علامتیں ہیں. جہاں سین نظر آ جائے شروع کے لفظ میں، آپ سمجھ جائیں یہ فعل ہے، یا سوفا شروع میں آ جائے تو آپ سمجھ جائیں یہ فعل ہے. तो कहते हैं यासीन बाशद यासीन हो, यानी उसके शुरू में चूसा या जरीबू अन करीब वो पिटाई करेगा, या सऊफा बाशद या सऊफा हो उसके शुरू में चूं सऊफा या जरीबू अन करीब वो पिटाई करेगा, तर्जमा एक जैसा ही होगा अन करीब वो पिटाई करेगा। तो सीन आता है करीब के लिए और सऊफा उसके मुकाबले में बाईद के लिए, वैसे दोनों करीब के लिए हैं लेकिन तकाबुल करें तो सीन ज्यादा करीब के लिए और सऊफा कम करीब के लिए। या हर्फ जज़्म बवद, या किसी लफ्ज के शुरू में हर्फ जज़्म हो जो जज़्म देता हो, क्या देता हो जज़्म, चूं लम या जरीब, जैसे लम या जरीब आपने गर्दान पढ़ी है, फेले नफी जहद बा लम या जरीबु, देखो बा पर आखिर में या जरीबु, इस लफ्ज के आखिर में बा पर हम क्या पढ़ रहे हैं जम्मा, या जरीबु बा पर पेश है, लेकिन हर्फ जज़्म लम ले आओ, अब कैसे पढ़ेंगे लम या जरीब, देखा बा पर जज़्म आ गया सुकून आ गया, तो ये हुरू कुछ हरूफ हैं जो जज़्म देते हैं। इसी तरह इन है, इन हर्फ शर्त वो भी क्या करता है जज़्म, तो ये अलामत है फेल की, जिस लफ्ज के शुरू में हर्फ जज़्म आ जाए आप समझ जाएं ये फेल है। इसम के अंदर उसके शुरू में हर्फ जर आता था, इसम की अलामत क्या थी, कौन सा हर्फ आए हर्फ जर, और फेल की अलामत है कि उस पर हर्फ जज़्म आता है, तो इसम में जर आएगा हर्फ जर की वजह से और फेल के अंदर जज़्म आएगा किसकी वजह से हर्फ जज़्म की वजह से, तो हर्फ जज़्म किसकी अलामत फेल की। तो कहते हैं या हर्फ जज़्म बवद, या हर्फ जज़्म हो चूं लम या जरीब, जैसे लम या जरीब, या जमीर मरफू मुत्तसिल बदो पैवंदद, या जमीर मरफू मुत्तसिल उसके साथ मिल जाए चूं जारा बतु जारा बता जारा बती, देखो ये तीन सीगे जिक्र कर दिए इन्होंने, तीन सीगे भाई, जमीर मरफू जमीर मरफू मुत्तसिल बदो पैवंदद, भाई आपने गर्दाने पड़ी हैं जाराबा जाराबा जाराबू जाराबत जाराबता जाराबना जाराबता जाराबतुमा जाराबतुम जाराबती जाराबतुमा जाराबतुन्ना जाराबतु जाराबना, तो आप देख रहे हैं कि देखो जाराबा ये फेल है, इसके आखिर में कोई जमीर जुड़ी हुई नहीं, हां इसके अंदर जमीर हुआ छुपी हुई है, वो जमीर क्या है छुपी हुई है, तो वो जमीर छुपी हुई है उसको कहेंगे मुस्ततिर, क्या कहेंगे मुस्ततिर का माना है छुपी हुई, छुपी हुई, तो जराबा के अंदर हुआ जमीर छुपी हुई, और अगर जमीर जाहिर हो यानी तलफ्फुज करते हैं बाकायदा आप उसको पढ़ते हैं तो उसको जमीर बारिज कहते हैं, क्या कहते हैं बारिज, बारिज का माना है जाहिर जाहिर, तो देखो जराबा इसके साथ कोई जमीर बारिज है नहीं, ज़ाद राबा ये तो फेल के हरूफ हैं तीनों, तो आखिर में कोई जायद हर्फ नहीं, तो इसके अंदर जमीर तो है लेकिन वो इसके अंदर छुपी हुई है मुस्ततिर है, क्या है जुबान से दोहराएं भाई क्या है मुस्ततिर, और अगर वो पढ़ने में भी आ जाए जाहिर हो तो उसको क्या कहते हैं जमीर बारिज कहते हैं, तो जराबा के अंदर साथ कौन सी जमीर है जमीर मुस्ततिर है, जराबा जराबा जी अलिफ आ गया, ये अलिफ क्या है ये जमीर है और जमीर बारिज है जाहिर है, देखो मैं पढ़ रहा हूं या नहीं इसको बा को, मैं इसकी वजह से बा को लंबा कर रहा हूं जराबा, देखो आपको पता चल गया मैंने अलिफ पढ़ा है, और जराबू जी ये इसके आखिर में वो क्या है जमीर है और कौन सी है बारिज है जमीर बारिज, सारे सीगों में जरा देख लें फिर सुने, जाराबा कौन सी जमीर हुआ और वो क्या है मुस्ततिर है, पहले जमीर बताया करो फिर बताया करो कि कौन सी है, जाराबा कौन सी जमीर हुआ और वो क्या है मुस्ततिर है, इसके अंदर छुपी हुई है हमें नजर नहीं आ रही, जाराबा अलिफ, ये अलिफ कौन ये तस्निया का सीगा है तो जो सीगा हो वही जमीर होगी, तो ये कौन सी जमीर तस्निया मुजक्कर की जमीर, और ये बारिश है या मुस्ततिर है?
बारिश
है, हम इसको बाकायदा पढ़ रहे हैं, तलफुज कर रहे हैं। जाराबू, ये कौन सी जमीर? वाव जमीर है। और ये कौन सी है? बारिश है। और कौन सी जमीर है? ये किस चीज की है? जमा मुजक्कर की, जमा मुजक्कर। जाराबत जी, हाँ हाँ, ये ता तानीस वाली है। ये लंबी ता क्या है? तानीस की अलामत है। इसकी ये सिर्फ इतना बतला रही है कि ये फेल करने वाली जात कोई मुअन्नस है, कोई मुजक्कर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो जाराबत, ये जो लंबी ताए साकिन है फेल माजी में, ये जमीर नहीं है, बल्कि ये सिर्फ तानीस की अलामत है। जैसे इसम के अंदर वो गोल ता तानीस की अलामत थी। जारिबुन का माना पिटाई करने वाला मर्द, और जारिबतुन उसके साथ गोलता जोड़ दी तो माना क्या हुआ? पिटाई करने वाली औरत। तो वहां इसम में गोल ता तानीस की अलामत है, और फेल के अंदर ये लंबी ता जो साकिन है इस पर कोई हरकत नहीं, ये तानीस की अलामत है जी। तो जाराबत इसके अंदर, इसके अंदर हाँ, हिया जमीर है, और ये ता क्या है? सिर्फ तानीस की अलामत। और हिया जमीर कौन सी है? बारिश है, मुस्ततिर है, मुस्ततिर है, छुपी हुई है, हमें नजर नहीं आ रही, हम उस पर तलफुज नहीं कर रहे। अगला सीगा जाराबता, अलिफ है, ता वही है, जाराबत वाली ता है। जाराबता, देखो तस्निया मुअन्नस का सीगा है, तो ये अलिफ क्या है? जमीर कौन, और बारिश है, मुस्ततिर, बारिश, और कौन सी जमीर है? तस्निया मुअन्नस गायब। पहले एक अलिफ आया था, वो क्या था? तस्निया मुजक्कर गायब, जाराबा, और ये जाराबाता, ये क्या है? तस्निया मुअन्नस गायब, क्योंकि साथ ता तानीस वाली भी जुड़ी हुई है। जाराबत, जाराबाता, जारा बन्ना, ये इसमें जमीर क्या है? नून है, और ये बारिश है, मुस्ततिर है, बारिश है, और कौन सी जमीर है ये? हाँ, जो सीगा हो वो बोल दिया करो, जमा मुअन्नस की जमीर है, वो सब औरतें। अगला सीगा जाराबता जी, ये ता क्या है? बारिश है, मुस्ततिर है, नहीं, जमीर क्या है इसमें? जाराबता, जाराबता जी, ये ताजमीर है, अंता क्यों कह रहे हो? ताजमीर है, ताजमीर है, बात समझ में आ गई? ये ताखुद जमीर है, हां अंता तो आप तब निकालते ना, वो तजरीबू मुजारे में है, तजरीबू कुछ आखिर में जुड़ा है नहीं, तो मुखातब की जमीर है, वो अंता निकालनी पड़ेगी। यहां तो खुद सात जमीर जुड़ी हुई है, नजर आ रही है, आप उस पर तलफुज कर रहे हैं, तो जारा बता कौन सी जमीर है? ता जमीर है, ये ता अलिफ बा ता, तो ये ता जमीर है। और कौन सी जमीर है? ये बारिश है, मुस्ततिर है, बारिश है, और किस चीज की जमीर है ये? वाहिद मुजक्कर हाजिर, जाराब तुमा जी, क्या जमीर है? तुमा, और कौन सी, और बारिश है, मुस्ततिर है, बारिश, और किस चीज की जमीर है? तस्निया मुजक्कर हाजिर, देखो जो सीगा हो वो बोल दिया करो, वही जमीर होती है। जाराब तुम, इसमें कौन सी जमीर है? तुम जमीर है, बारिश है, मुस्ततिर है, बारिश है, और कौन सी जमीर है, किस चीज की है? जमा मुजक्कर हाजिर। जाराबती जी, कौन सी जमीर है? हाँ, तीनी कहना तो उमूमन तलबा ती कहते हैं, ता कहो, वही अलिफ बा ता, ये हर्फ क्या है? ता, अलिफ बा ता, तो ये ता जमीर है, ये बारिश है, मुस्ततिर है, बारिश है, हम उस पर तलफुज कर रहे हैं बाकायदा। और किस चीज की जमीर है? वाहिद मुअन्नस हाजिर। जरब तुमा, कौन सी जमीर? तुमा, बारिश, मुस्ततिर, बारिश, किस चीज की जमीर है? तस्निया मुअन्नस हाजिर। जराब तुन्ना, क्या जमीर है? तुन्ना, और बारिश है, मुस्ततिर, बारिश है, हम तलफुज कर रहे हैं, और किस चीज की जमीर है? जमा मुअन्नस हाजिर। अगला सीगा जराब तु जी, कौन सी जमीर? ता, तू नहीं कहना, तू नहीं कहना, तलबा मुमन तू कहते हैं, ता जमीर है, अलिफ बा ता, ये हर्फ बोलते हैं, जो आखिर में एक हो तो हर्फ बोलते हैं। जैसे चलो ये बात भी आ गई। याद रखो वो कलिमा जो एक हर्फ पर मुश्तमिल हो, जब उसको जिक्र करना हो, उसका नाम लेना हो, तो हुरूफ तहज्जी में जो उसका नाम है वो लेते हैं। जैसे देखो जाराबा जाराबा जी, इसके आखिर में कौन सी जमीर? अलिफ। अलिफ क्यों कह रहे हो? आ क्यों नहीं कहते? अभी आप ती कह रहे थे, अभी आप तू कह रहे थे, तो यहां भी आ कहो ना कहो ये आ जमीर है। कोई कहता है आ? नहीं, क्योंकि ये एक हर्फ है। जब एक हर्फ हो तो उसका वो नाम लेते हैं जो अलिफ बा ता के अंदर है, और अलिफ बा ता में इस एक हर्फ को क्या नाम है जो जरा बा के आखिर में है? अलिफ है। तो ये अलिफ जमीर है, और जराब ता ये क्या है? ता है। और जराब तू ये भी क्या है? ता है। और जराब ती ये भी क्या है? ता है। हां अगर एक से ज्यादा हर्फ हो फिर वही नाम लो। जैसे जराब तू मां, देखो तू मां आपने ता मीम अलिफ तीन हर्फ थे तो वही नाम ले लिया जो यहां बन रहा है तू मां। जराब तुम कितने हरूफ? तुम में दो हरूफ ता और मीम, तो तुम ही जिक्र कर दिए। लेकिन जब एक हर्फ हो तो वो नाम लो जो हरूफ तहज्जी के अंदर इसका था। फिर देखो जराबा में क्या जमीर हुआ? जराबा में अलिफ, देखा एक हर्फ है। जराबू में वाओ, देखा एक हर्फ है तो वो वाओ वाला नाम लिया। सूरत समझ में आ गई? अच्छा अब आइए जराब तू जराबना, आखिरी दो सीगे रह गए थे माजी के। जराब तू में कौन सी जमीर? ता जमीर है। और बारिश है मुस्ततिर है? बारिश है। और किस चीज की जमीर है? वाहिद मुतकल्लिम। और जराबना ना, देखा नून और अलिफ दो हर्फ है ना, तो अब यही नाम लो, ना जमीर है। और बारिश है मुस्ततिर है? बारिश है। और किस चीज की जमीर है? जमा मुतकल्लिम, यूं कहो मुतकल्लिम माल गैर की जमीर है। अब फिर जरा जल्दी से दोहराओ, जराबा में कौन सी जमीर हुआ और बारिश मुस्ततिर? मुस्ततिर। जराबा अलिफ, जराबू वाओ, जराबत हिया, और ये ता क्या है? मुअन्नस की अलामत है सिर्फ, ये लंबी ता, ये फेल की अलामत है, ये लंबी ता तानीस के लिए सिर्फ फेल में आती है, इसम में गोल ता आती है। अच्छा जराबा ता, हाँ अलिफ ता तो तानीस की अलामत है, जमीर सिर्फ वही जराबत, जो जराबत में ता है वही जराबता में भी है। लेकिन यहां चूंकि आखिर में अलिफ आ गया, और अलिफ अपने से माकबल हमेशा जबर चाहता है, लिहाजा उसका पर हमने जबर पढ़ दी, वरना ये ता असल में साकिन है। तो जरा बता में क्या है? अलिफ। जरा बना नून, देखा ना नहीं कहा आपने ना, क्योंकि एक हर्फ है तो नून जमीर। जरा बता ता जमीर, जराब तुमा तुमा जमीर, जराब तुम जमीर, जराब ती ता जमीर, जराब तुमा तुमा जमीर, जराब तुन्ना जमीर, जराब तू ता जमीर, और जराब ना जमीर। तरीका समझ में आ गया? इसी तरह मुजारे में भी आ जाओ, जरा ये भी देख लो, या जरीबू के अंदर हुआ, क्योंकि या जरीबू या तो अलामत मुजारे है, ज़ाद रा बा ये तो फेल के अपने हरूफ हैं, आगे कोई लफ्ज कोई हर्फ नहीं जुड़ा हुआ, तो हम कहेंगे इसके अंदर कौन सी जमीर है हुआ, जो सीगा है उसके मुताबिक जमीर निकाल लेंगे। और सीगा कौन सा है? वाहिद मुजक्कर गायब, तो वाहिद मुजक्कर गायब की जमीर हुआ निकाल ली। और या जरीबानी, याद रखो ये फेल मुजारे के आखिर में जो नून आता है सवाए जमा मुअन्नस के सीगों के, सिवाय किसके? बाकी जितने नून आए ये नून एराबी हैं, ये जमीरें नहीं हैं, क्योंकि ये लम और लम की वजह से गिरते हैं या नहीं गिरते? ये गिर जाते हैं, तो लिहाजा ये जमीरें नहीं हैं। यज़रीबु कौन सी जमीर हुआ? बारिश मुस्ततिर जे मुस्ततिर छुपी हुई है। और कौन सी जमीर है? वाहिद मुजक्कर गायब। यज़रीबानी अलिफ है, नून तो एराबी है। यजरीबूना वाव है। तजरीबू इसके आखिर में कुछ नहीं, तो इसके अंदर हिया जमीर। तजरीबानी अलिफ है, नून एराबी है। यजरीबना ये जमा मुअन्नस के सीगों में नून जमीर है। यजरीबना नून है। तजरीबू तजरीबू हां अंता, क्योंकि ज़ाद रा बा आखिर में कुछ जुड़ा हुआ है, नहीं तो आप जमीर उस सीगे के मुताबिक निकाल लो, वाहिद मुजक्कर हाजिर वाली और वो अंता है और वो मुस्ततिर है, बारिज है, मुस्ततिर। तजरीबानी अलिफ, तजरीबूना वाओ, तजरीबीना या, तजरीबानी अलिफ, तजरीबना नून है, अजरीबू आना ज़ादरा बात तो फेल किए, आगे तो कुछ है ही नहीं, तो इसी के अंदर जमीर अजरीबू में क्या है, आना मुस्ततिर है, बारिज है, मुस्ततिर है। और नजरीबू में नहनु जमीर छुपी हुई है। बात समझ में आ गई। और याद रखो ये सारी फाइल की जमीरें हैं, फाइल की, और फाइल हमेशा मरफू होता है, तो इन जमीरों को कहेंगे कि ये जमीरें मरफू हैं और मुत्तसिल हैं। मुत्तसिल का माना जुड़ी हुई हैं। देखो जराबता, जराबतुमा, जराबतुम, देखो जराबा के साथ जुड़ी हुई हैं सारी, तो इनको मुत्तसिल कहेंगे, जुड़ी हुई। तो कौन सी जमीरें हैं ये सारी जितनी हमने अभी निकाली? मरफू हैं क्योंकि फाइल हैं, और मुत्तसिल हैं। तो जमीर मरफू मुत्तसिल ये सिर्फ फेल के साथ जुड़ती है, इसम के साथ कभी नहीं जुड़ती। तवज्जो है, कौन सी जमीर? मरफू मुत्तसिल। मरफू क्यों होती है? क्योंकि फाइल है, और फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू। ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा ज़ैदुन, ये ज़ैद पर मैं पेश पढ़ रहा हूं, मालूम ज़ैद मुअरब है या मबनी है? मुअरब है। ज़ैदुन, ज़ैदन, ज़ैदिन आखिर बदलता है या नहीं, तो ये मालूम मुअरब है। और इस पर कभी पेश पढ़ना है, कभी जबर, कभी जेर, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, आमिल को देखना है। अगर पेश देने वाला आमिल हुआ तो पेश पढ़ेंगे, जबर देने वाला आमिल हुआ तो जबर पढ़ेंगे, जेर देने वाला आमिल हुआ तो जेर। तो ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा के लिए ज़ैदुन फाइल है, और फाइल क्या होता है? मरफू, उस पर रफा यानी पेश आती है, इसलिए मैं पेश पढ़ रहा हूं ज़रबा ज़ैदुन। तो ये तो फाइल हमेशा क्या होता है? मरफू। इसी तरह ये तो ये फाइल की जमीरें फेल के साथ जुड़ी हुई हैं जो अभी हमने निकाली, और फाइल क्या होता है? मरफू। तो इन जमीरों को क्या कहेंगे? मरफू मुत्तसिल, जमीर मरफू मुत्तसिल। तो जमीर मरफू मुत्तसिल, मरफू से क्या पता चला? फाइल है, और मुत्तसिल से क्या पता चला? साथ जुड़ी हुई है, अलग नहीं है। तो ये जमीर मरफू मुत्तसिल सिर्फ किसके साथ जुड़ती है? फेल के साथ जुड़ती है, इसम के साथ नहीं जुड़ती। इसम के साथ और जमीरें तो जुड़ सकती हैं, लेकिन मरफू मुत्तसिल नहीं जुड़ सकती। इसीलिए इन्होंने कहा कि या जमीर मरफू मुत्तसिल बदो पैवंदद, या जमीर मरफू मुत्तसिल इसके साथ जुड़ी हो, उसके साथ जुड़ जाए। चूं जारा बतू, जारा बता, जारा बती, तीनों सीगों के अंदर इसी तरह है, जमीर मरफू साथ जुड़ी हुई है। और कौन सी जमीर है? मरफू मुत्तसिल। क्या जमीर है? जमीर को जरा जिक्र करो, ता जमीर है। क्या है? ता जमीर है। और बारिश है, मुस्ततिर है, बारिश है। या ताए साकिन, या उस ताए साकिन उसके साथ जुड़ी हो, साकिन ता, चूं जाराबत। अभी मैंने आपको बताया जाराबा, जाराबा, जाराबू, जाराबत, ये ता किस चीज की है? तानीस की है, ये जमीर नहीं है। और ये लंबी ता, ये सिर्फ तानीस के लिए आती है, और सिर्फ किस में आती है? फेल में। इसम में गोल ता आती है तानीस के लिए, तो ये लंबी ता तानीस वाली ये सिर्फ किसके साथ जुड़ेगी? फेल। तो ये फेल की अलामत है, इसीलिए कहा या ताए साकिन चू जाराबत, या ताए साकिन उसके साथ जुड़ी हो जैसे जाराबत। या अमर बाशद, या वो अमर हो, ए जरेब, ए जरेब क्या है? अमर का सीगा, और अमर इसम में नहीं आता बल्कि किस में आता है? फेल में। तो अम, जब कोई सीगा अमर का हो आप समझ जाएं ये फेल है। इसी तरह नहीं का भी आपको बताएंगे, ला तजरीब, ला तजरीब को देखते ही आप समझ जाएं ये क्या है? फेल, क्योंकि ये नहीं का सीगा है। अमर, अमर जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाता है कि ए जरेब पिटाई करो, देखो पिटाई, या इस्मा मेरी बात सुनो, तो अमर में काम के करने का हुक्म होता है और नहीं में काम से रोकने का हुक्म होता है। ए जरीब क्या माना? पिटाई करो। और ला तजरीब ये नहीं है, ये इसमें रोका जा रहा है कि पिटाई ना करो। तो अमर यानी एजरीब ये भी किसकी अलामत? फेल की। और नहीं यानी ला तजरीब ये भी किसकी अलामत? फेल की। इसम में ना अमर आता है और ना नहीं भाई। तो कहते हैं या अमर बाशद या वो अमर हो चूं एजरीब, या नहीं बाशद या नहीं हो होगा चूं ला तजरीब जैसे ला तजरीब। जी ये फेल की अलामतें खत्म हुई। जरा इनको गिनो भाई। पहली अलामत कौन सी? कद। दूसरी अलामत सीन। तीसरी अलामत सौफा शुरू में आ जाए, तीन हो गई। चौथी अलामत हरफे जजम उस पर आ जाए चूं लम यजरिब, या उसके साथ क्या जुड़ जाए? जमीर मोरफो मुत्तसिल जुड़ जाए। कितनी हो गई? पांच हो गई, पांच। या आखिर में क्या जुड़ जाए? ताए साकिन। कितनी हो गए? छह। सातवीं अलामत कि वो अमर हो और आठवीं अलामत कि वो नहीं हो। तो आठ अलामतें फेल की जिक्र की, ग्यारह अलामतें थी इसम की और आठ अलामतें फेल की। आगे देखिए वह अलामत हर्फ आनस्त। हां आपको आगे बतलाएंगे कि हर्फ की अलामत यह है कि वो इसम या फेल की कोई अलामत कबूल नहीं करता। यानी जितनी इसम की अलामतें बयान हुई उनमें से कोई अलामत हर्फ में नहीं आएगी। इसी तरह जितनी अलामतें फेल की बयान हुई उनमें से कोई अलामत हर्फ में नहीं होगी। तो कहते हैं वह अलामत हर्फ आनस, और हर्फ की अलामत वो है कि हेच अलामत अज अलामत इस्मो फेल दरो न बवद, कि कोई अलामत अज अलामत इस्मो फेल इसम और फेल की अलामतों में से कोई अलामत दरो न बवद उसके अंदर न हो। तर्जमा समझ में आ रहा है? वह अलामत हर्फ आनस, और हर्फ की अलामत वो है कि हेच अलामत अज अलामत इस्मो फेल। तर्जमा आखिर से होगा कि इस्मो फेल की अलामतों में से कोई अलामत दरो न बवद उसमें न हो। तो ये हर्फ होगा भाई। बात समझ में आ गई जी। तो आज हमने फेल की अलामतें पढ़ी। इन्होंने बतलाया आपको कि फेल वो है कि जिसके शुरू में कद आ जाए, या उसके शुरू में सीन आ जाए, या उसके शुरू में सौफा आ जाए। मैंने बताया था सीन और सौफा मुजारे को किसके साथ खास करते हैं? मुस्तकबिल के साथ। लेकिन सीन जो है वो सौफा के मुकाबले में ज्यादा करीब के लिए है। और उसके बाद इन्होंने बताया था कि फेल की एक अलामत यह है कि उसके शुरू में हर्फे जजम आ जाए, और उसकी वजह से फेल पर फिर जजम पड़ेंगे, और या उसके साथ कौन सी जमीर मिल जाए? मरफू मुत्तसिल। मरफू क्या माना? कौन सी जमीर हो? फाइल की। और मुत्तसिल का क्या माना? साथ जुड़ी हो। या उसके साथ ताए साकिन जुड़ जाए, तानीस वाली लंबी ता, या वो अमर का सीगा हो या नहीं का सीगा हो। ये फेल की अलामतें हैं। और हर्फ न इसम की किसी अलामत को कबूल करता है और ना फेल की, लिहाजा उसमें इसम या फेल की कोई अलामत नहीं आएगी। चलिए बस भाई। हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम। बात सबको अच्छी तरह समझ में आ गई।